ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है। क्यों?
परमात्मा
क्यों? बाबा के सारे बच्चे हैं, बाबा को सब याद करते हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। परमात्मा है सारे विश्व का कल्याण करने वाला और तुम उनके साथी बन करके, सारे विश्व का कल्याण करते हो। अब हमने अपने आप से पूछना है कि हम कितने साथी हैं, क्योंकि बाबा ने तो सीधा उठा के मक्खन पूरा का पूरा रख देता है। हमारा हजम करने की ताकत कितनी है, कितने मक्खन के हम अधिकारी हैं, ये हमें सोचना है। क्योंकि परमात्मा है सारे विश्व का कल्याण करने वाला और हम आत्माएं हैं कल्याणकारी, मतलब इतना हम कल्याण करने वाले सतयुग में नहीं होते, त्रेता में नहीं होते, द्वापर में नहीं होते, कलयुग में नहीं होते। सिर्फ यही संगम के समय पर बाप सारे विश्व का कल्याण करने वाला है और हम देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी हैं। अब हम जितनी आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, वही आत्माएं फिर हमें देवता के रूप में, देवता भी हम तब बनेंगे जब अब हम कल्याण करेंगे। यदि अब हमने किसी का कल्याण किया नहीं तो हमें वो देवता मानेंगे क्यों? ठीक है करें? तो ये कल्याणकारी जन्म देवताओं से भी क्या है, उत्तम है। तो उत्तम बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? अब बाबा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो मक्खन लगा दिया और चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा दिया। चने के झाड़ पर चढ़े हो कभी?
छोटा सा होता है, इसका कौन चढ़ेगा?
हाँ नहीं, बाबा चढ़ा देता है झाड़ के ऊपर, बोले देखो बच्चे आप ऊपर हो, तुम सबसे बड़े, देवताओं से भी ऊंचे हो, सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। हमने मान लिया, हम खुश हो गए। अब बाबा पूछ रहा है, अब तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? अब जवाब देना है। मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइस देते हैं? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो और मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइस देते हैं? कौन सी मदद करते हैं हम भाई?
सबको बाप का परिचय देते,
सबको बाप का परिचय देते हैं। बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, पवित्रता का और शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद देते हैं। हम उन्हें कौन सी मदद करते हैं? पवित्रता की। हम पवित्र बनते हैं तब क्या है पवित्रता की मदद? पवित्रता की मदद हम क्या देते हैं? सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना सिर्फ पवित्र नहीं है। हां जी,
पालन करते हैं
क्या? ये क्वेश्चन बाबा ने किया है कि पवित्रता की क्या मदद करते हैं? सिर्फ ब्रह्मचर्य रखना ये केवल पवित्रता नहीं।
बाबा, श्रीमत पूरी जो भी है उसको मानने वाला ही तो बनेगा।
तो पूरी क्या श्रीमत है पवित्रता के लिए, बाकी तो बहुत सारे श्रीमत है, पवित्रता के लिए श्रीमत बड़ी सिंपल सी दी है कि हमारे से किसी भी आत्मा को दुख नहीं। हम किसी आत्मा से दुखी ना हो, इतने से नहीं रुक जाता, फिर दो बातें और भी करता है। क्या करता है और दो बातें क्या करता है? मेरे से दुखी तो कोई नहीं हुआ, पर तो मेरे से कोई सुखी हुआ, मैंने किसी को सुख दिया और मैं सुख दे तब सकता हूं चाहे वो मुझे कुछ भी दे, उसके बावजूद मैं उसे सुख दूं। लेना भी सुख है और देना भी सुख है, और दुख नहीं देना दुख
नहीं,
यह है पवित्रता। बाबा ने यज्ञ रचा है, उसमें उसकी हम संभाल करते हैं। अब यज्ञ रचा है, हमने उसकी क्या संभाल करनी है? यज्ञ तो रचा हुआ है, हमने उसकी क्या संभाल करनी है?
बाबा के बच्चों को बाबा से मिलाना,
बाबा के बच्चों को बाबा से मिलाना है। उनको परिचय तो दे दिया, अब उनकी जो समस्याएं आए, उनके आगे जो विघ्न आए, उन विघ्नों से भी उनको बचाने की युक्तियां देनी है। जब हम निर्विघ्न होंगे तब हम उनको निर्विघ्न बना सकेंगे। पहले हम स्वयं के जीवन में कोई विघ्न नहीं आए, जो हमें बाबा की श्रीमत लेने से, हमारी चढ़ती कला होने से रोके, ऐसा कोई विघ्न हमारे जीवन में नहीं आए। फिर हम औरों को अपने अनुभव से समझाएं कि देखो ऐसा करने से आपको कोई विघ्न नहीं आएगा, ऐसा करने से मुझे सफलता मिली है, आप भी ऐसा करो तो आपको भी सफलता मिलेगी। ये होता है ब्राह्मणों का काम कि हमारे यज्ञ में कोई समस्या ना आए, कोई भी बात हो तो उसका हल करने के लिए ब्राह्मण के पास विधि हो, युक्ति हो। इसलिए जब यज्ञ करते हैं कुछ भी होता है जी आप कैसे करें, जैसे पंडित कहेगा वैसे करेंगे। तो हम ब्राह्मण हैं, हमें बाबा ने यज्ञ की विधि सिखाई है, उसकी विधि पर हम सबको दुख से पार ले चले, कल्याण तो तभी होगा ना उनका। तो जरूर बाबा हमें फिर प्राइज क्या देंगे? संगम पर हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है, वहां तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। संगम युग पर हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है, क्या प्राइज मिलती है? अब क्या मिल रहा है? खुशी। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोई फायदा होगा त्रिकालदर्शी बनने से?
तीनों लोगों, तीनों कालों,
तीनों कालों का हमने जान लिया, उसका कोई फायदा मिलेगा? क्या क्या फायदा मिलेगा? हमने तीनों कालों को जान लिया,
अपने भूतकाल को, भविष्यकाल को, वर्तमान को
जान लिया, अब क्या फायदा उसका बताओ? हम देवता थे, फिर पतित बन गए, फिर हम देवता बनेंगे, अब बताओ फायदा क्या है इसका? वो पवित्र दुनिया, हाँ जी, हाँ जी, कैसे बच जाओगे? बोले इसमें कोई ऐसा तरीका है इसमें जो बुराई से बच जाए?
हम नहीं भाई बहनों को उसके बारे में बताएंगे।
अब भाई जी आपको मिल गया है कुछ, अब उसका बता नहीं, आपको क्या मिला ये पूछ रहा हूं मैं। वो आपके, आपको बाबा कहता है मैंने तुम्हें त्रिकालदर्शी बना दिया, बाबा ने तो कह दिया त्रिकालदर्शी बना दिया, चलो हम मान लेते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हो गया, तो त्रिकालदर्शी होने के बाद मुझे कोई फायदा मिला है? क्या हाँ, त्रिकालदर्शी बनना माना हमें स्वदर्शन चक्र चलाना आ गया, और हम अपना सुदर्शन चक्र चलाकर जो भी अभी भी कमियां हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म छोटी छोटी सारी बुराइयों को हम अपना काट सकते हैं। जब हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे तब तो हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, तब तो हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। अपने आप को बैठकर हमें समझ में आ गया कि यदि सतयुग का देवता बनना है तो अपने एक एक छोटी छोटी कमी का गला काटते जाए, तब भविष्य में गद्दी नशीन बन सकते हैं। यदि हमने अपनी बुराइयों का गला काटना छोड़ दिया तो क्या के त्रिकालदर्शी हम, हमें पता है कि हम ये करेंगे तो मिलेगा। तो इसलिए त्रिकालदर्शी बनने का मतलब होता है वर्तमान में अटेंशन देना, खुश रहना और खुश रखना, वो भी बाबा की श्रीमत पर। ये नहीं कि उनको कोई संसारिक सुख चाहिए, मैंने उनके लिए कर दिया और मैं खुद दुखी हुआ, परंतु दुखी हुआ तो उसको सुख नहीं दिया। तो ये बात भी हमें ध्यान देनी है। तो वो कौन सी कमी है जो मुझे दूसरों को दुख दिलाती है? मेरा क्रोध, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म, हर एक पर चेक करना कि ये मेरी कमी है ना, इस कमी को मैं अपने जीवन से निकालूं ताकि किसी दूसरे को मेरे कारण दुख ना पहुंचे। तो ये पवित्रता है, मतलब इस पवित्रता को, संपूर्ण पवित्रता को लाने के लिए ये विधि हमें सिखाई, हमें ये युक्तियां दी कि जो हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, गलत कुछ होता ही नहीं। टेंशन क्यों लेते हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, खत्म बात। मतलब क्रोध आता है तो दुखी होते हैं ना, ये वर्तमान की प्राइज है। पवित्रता है, खुशी है, ये प्राइज वर्तमान में मिलती है, भविष्य में तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। यदि अब हम खुश नहीं है, वर्तमान में हम दुखी हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं कोई हमने गलती कर रखी जिसके कारण हम दुखी हैं। ज्ञान को ठीक रीति से समझा नहीं है, त्रिकालदर्शी नहीं है यदि हम दुखी हैं। गीत। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम हमारे, पिता भी तुम हो, माता भी तुम हो, सहायक भी तुम हो, स्वामी भी तुम हो, सखा भी हो। ओम शांति। ये किसकी महिमा है, कौन है ऐसा जो हमारे पिता भी है, माता भी है, सहायक भी है, स्वामी भी है, सखा भी है? ये है परम प्रिय, परम पिता, परम आत्मा, जिनका नाम है शिव, उनकी महिमा है ये, उनका ऊंचे ते ऊंचा नाम भी है, नाम ऊंचे ते ऊंचा है शिव। क्यों है ऊंचे ते ऊंचा? कि वो सर्व का कल्याणकारी है, शिव माना कल्याणकारी, वो सर्व का कल्याणकारी है, ये और कोई हो नहीं सकता। तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है, धाम ऊंचे ते ऊंचा कैसे है? परम धाम में रहते हैं, परम अवस्था में रहते हैं, इतनी ऊंची अवस्था में रहते हैं जो उस अवस्था तक और कोई पहुंच पास पहुंच भी जाता है तो उसके बाद वापस गिरना शुरू हो जाता है। परमपिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंचा, ऊंची आत्मा। परम आत्मा का मतलब है सबसे ऊंची ते ऊंची आत्मा, परम, उससे ऊपर कोई नहीं। परम का हिंदी में अर्थ होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंची आत्मा। और किसको भी परम पिता परम आत्मा नहीं कहेंगे, ना परम पिता कह सकते हैं, ना परम पूज्य कह सकते हैं, ना परम आत्मा कह सकते। क्योंकि हम लगा देते थे, पत्र लिखते थे बचपन में, जब जब तक पत्र का जमाना था, तो परम पूज्य पिताजी माताजी, परंतु बाबा कहते परम सिवाय मेरे और किसी को नहीं कह सकते हो। तब हमें अकल नहीं थी तो हम लिख देते थे, अब नहीं लिख सकते।
नाम तो लिख देते हैं,
तो नाम तो भाई जो रख रखे उन्होंने तो नाम तो रखे है ना, तो उसमें क्या कह सकते। परंतु परम पिता परम आत्मा किसी को नहीं कहा जाता, उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते, तेरी महिमा का कोई पार नहीं। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो बेअंत है, हम उसका अंत नहीं पा सकते। और बाबा क्या कहते हैं, मैं आकर तुम्हें अपना अंत देता हूं,
अपना
अंत देता हूं। लाइन को समझना है, ऋषि मुनि कहते थे हम उसका अंत नहीं पा सकते, वो बेअंत है, और बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों को आकर अपना अंत देता हूं, एक एक राज समझाता हूं। अब समझना ना समझना ये आप आत्माओं का पार्ट है। वो भी नेति नेति कहते आए हैं, नेति नेति कहते आए हैं। नेति नेति का मतलब हमें याद रखना है, कब शुरू हुआ पता नहीं, कब खत्म होगा पता नहीं, इसका आदि क्या है और अंत क्या है, आरंभ क्या है और अंत क्या है, ये हमें नहीं पता। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, क्यों क्यों देते हैं, बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना, हमारा बाप है, बच्चों को बाप का पता तो होना चाहिए ना, तो बच्चों को परिचय मिले कैसे। अब देते हैं परंतु मिले कैसे, जब तक वे इस भूमि पर ना आए, पर काया में प्रवेश ना करे, उनका परिचय कोई और दे नहीं सकता, और कोई परमात्मा का परिचय दे नहीं सकता। जब फादर शोज सन, बाप आकर अपना परिचय देते हैं शोज सन, तब सन शोज फादर, परमात्मा आकर स्वयं का परिचय बच्चों को दे, तब तो बच्चे बाप का परिचय औरों को दे सके। जब तक बाप आकर अपना परिचय बच्चों को ना बताए, अपना राज बच्चों को ना दे, तो बच्चे वो राज दूसरों को, बाप का राज कैसे दूसरों को बता सकेंगे। तो बाप आकर अपना अंत हम बच्चों को देते हैं, और फिर हम उसे समझकर अनुभव सहित औरों को समझाते हैं। बाप समझाते हैं मेरा पार्ट नूंदा हुआ है, यह अंत है, जैसे तुम आत्माओं का पार्ट एक्यूरेट नूंदा हुआ है, आप आत्मा के अंदर मेरा भी पार्ट नूंदा हुआ है, मुझ आत्मा के अंदर। जैसे तुम अपने पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, मैं भी अपने पार्ट को चेंज नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पार्ट को चेंज नहीं कर सकता, तुम मेरे पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। ये ड्रामा एक्यूरेट है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, परंतु मैं ड्रामा से अलग नहीं चल सकता, और कोई भी आत्मा ड्रामा से अलग नहीं चल सकती, अपने पार्ट से हटकर नहीं चल सकती। जो उसने जिस समय जैसे करना है वैसे ही करेगा, ये अंत है, इस ड्रामा का राज है, और ये राज जिसको समझ में आ जाए वो कभी दुखी
नाराज नहीं होगा,
वो नाराज नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा। क्योंकि उसको राज समझ में आ गया। क्योंकि जो कुछ भी जो कर रहे हैं, कितना भी दुख दे रहे हैं, कितना भी सुख दे रहे हैं, वो एक्यूरेट है, ठीक है। बस अब ठीक है तो फिर मैं क्यों दुखी हूं? मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीता राम रघुपति राघव, उनको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं उसको? क्योंकि रावण का राज्य है, रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य, तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है ये कोई भी नहीं जानते हैं, वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है। जलता थोड़े ही है, मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण का रखो राज्य करने क्यों देते हैं? जब परमात्मा राम समर्थ है फिर वो रावण को राज्य क्यों करने देता है? बाप समझाते हैं ये नाटक है भाई, हार और जीत का, हारेंगे तो जीतेंगे ना, हेल और हेवन का, नरक और स्वर्ग का। स्वर्ग का मतलब तब समझ में आएगा ना जब नरक हो, दिन का महत्व तब समझ में आएगा ना जब रात हो, कि दिन अच्छा है कि रात अच्छी है। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है, ऐसे नहीं। परम पिता सर्वशक्तिमान है, ऐसे नहीं। तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है? ये अंत है बाबा का, कि मैं तभी आऊंगा ना जब खेल पूरा हो। अब खेल पूरा हुआ पहले बीच में मैं आ जाऊं तो खेल तो बदल जाएगा ना, वो पार्ट में नहीं है। मेरे पार्ट में नहीं है कि मैं एक सेकंड पहले आ जाऊं, एक सेकंड पहले मैं कोई बात बोल नहीं सकता। मैंने ड्रामा में एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट बोलना है।
वो बाबा ही क्या, फिर वो सबके लिए वही एक ला लागू है?
तो बाप
ड्रामा के अनुसार टाइम के अनुसार ही आएगा।
हाँ, ये अंत बाप ही आकर अपना बता रहे हैं ना, वरना कोई जानता था ये राज कि परमात्मा भी हमारी तरह इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक एक्टर है। उन्होंने समझा सर्वशक्तिमान है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, जाके उसके सामने रख दो, एक भी ना किया जिंदा आज तक। कहते तो रहे परंतु एक भी मुर्दे को बाबा ने जिंदा, परमात्मा ने जिंदा नहीं किया। उसका पार्ट है वो ठीक हो गया, वो वापस आ गया, तो मरा नहीं था। यदि कोई मर जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, मर जाए तो वापस नहीं आ सकता। और ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो ये राज समझ में आ जाए तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है सर। और परंतु ये समझ में तब आएगा जब हम इस बात को बैठकर अपने आप को समझाएंगे, सोचेंगे आज बाबा ने कहे क्या दिया, अपना अंत दे दिया, इसका फायदा क्या है हमें, उसको बैठकर अपने जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। खेल को बंद कर सकता हूं क्या मैं? बीच में आ जाऊं तो खेल वही खत्म हो जाएगा, वही संगम शुरू हो जाएगा। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूं। इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, डूम्स डे भी मनाते हैं, आखिरी रात भी मनाते हैं, जजमेंट डे भी मनाते हैं। मतलब ये वो दिन है, जैसे हमारे यहाँ शिवरात्रि मनाते हैं तो वो डूम्स डे कहते हैं, एक दिन आएगा कि भगवान सबको न्याय देगा, सब आत्माओं को आखिरी रात में फैसला सुनाएंगे। आखिरी आरात में सारी आत्माएं खुदा के सामने हाजिर होंगी। शिवाय नमा भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवताएं नमा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहते, तीनों को ही देवता कहते हैं। शिव को परमात्मा नमा कहते हैं। शिव क्या ऐसा ही है? शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबूलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में दिखाया है? ऐसा है क्या शिव? वहां इतना बड़ा बड़ा शिवलिंग रख रखा है, अब वो तो शिव नहीं है, वो तो शिव नहीं है। क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है जितना बड़ा शिवलिंग बना के रख दिया? नहीं भाई, वो आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है। आत्मा छोटी हो परमात्मा बड़ा हो ऐसा है क्या? नहीं है। क्वेश्चन आएगा ना कि आत्मा और परमात्मा का साइज एक ही, ना परमात्मा का साइज बड़ा है ना आत्मा का साइज बड़ा है। परम आत्मा में भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, आत्मा में भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, सभी आत्माओं में। परंतु ये वंडरफुल बात है कि हर आत्मा यूनिक है, एक जैसी दो आत्माएं नहीं। साइज बराबर है, रिकॉर्डिंग बराबर है, परंतु हर एक आत्मा की रिकॉर्डिंग अलग 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 है। वो हर एक आत्मा की रिकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा और बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परम आत्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है। छोटे को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है, ऐसे आत्मा और परमात्मा में यही बड़ा और छोटे वाली बात है। हम आत्माएं छोटी हैं, साइज में छोटी नहीं। परमात्मा बड़ा है, साइज में बड़ा नहीं, परंतु किस में बड़ा है? गुणों में बड़ा है, गुणों में बड़ा है। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी महिमा गाते हो तो कहते हो परम पिता परम आत्मा की महिमा अपरम अपार है, हम नहीं पार सकते। मनुष्य सृष्टि का बीज है तो पिता को बीज कहेंगे ना, वो क्रिएटर है। बाकी जो इतने ये वेद, ये उपनिषद, ये गीता, ये यज्ञ, तप, दान, पुण्य, ये सब भक्ति मार्ग का समान है। इनका भी अपना टाइम है, जब भक्ति का टाइम आता है तो ये भी आते हैं। आधा कल्प भक्ति का और आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, स्वर्ग, और भक्ति है नरक। जब नरक होता है तो भक्ति होती है, जब स्वर्ग होता है तो स्वर्ग होता है तो सुख होता है। ये है शिव बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखाता हूं इस ब्रह्मा के तन का आधार लेकर, राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानी का समय आ पहुंचा है। चारों तरफ धर्म की क्या हो रही है? ग्लानी होती। समय सबसे जास्ती ग्लानी किसकी करते हैं? परम पिता परम आत्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य भवती भारत। जब जब इस धरती पर अधर्म का धर्म का नाश होता है तब मैं आता हूँ अधर्म का विनाश कर पुनः सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे नहीं, मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया था, जैसे अब आपको सामान्य हिंदी में समझा रहे हैं, ऐसे ही हर कल्प आकर इसी भाषा में समझाते हैं। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वालों की वाले की ग्लानी होती है, मुझे ठिक कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूं बताता हूं भाई मैं इनमें नहीं हूं, मैं तो तुम आत्माओं जैसा हूं और मैं तो परम धाम में रहता हूं। जब तुम दुखी हो जाते हो तो तुम बुलाते हो तो मैं
भाई हिंदी ये कब से चली है, बाबा कहता है कि मैं जब भी आता हूँ हिंदी में समझाता
हूँ। हिंदी उर्दू
संस्कृत की भाषा थी,
हिंदी उर्दू की बेटी है, आप बताओ कब से चली है।
अब बेटी तो बहू भी बना दो उसमें दिक्कत आ रही है।
बहू बनाओ कुछ बनाओ, पर बेटी क्यों कहा इसको, सुन इसको, हिंदी को उर्दू की बेटी क्यों कहा, क्योंकि पहले जो है ना हिंदी भाषा नहीं थी, संस्कृत थी। अब कोई बात नहीं, संस्कृत थी। अब संस्कृत के बाद मुगल जब भारत में आए, अब उन्होंने संस्कृत से अब यहाँ भारत में आए तो यहाँ पर अवधी थी, ब्रज भाषा थी, तो ये भाषाएं थी, बघेली थी, फिर जो पुरानी भाषाएं, मतलब क्योंकि संस्कृत से बदलती तो गई भाषा, भाषा सरल तो होती गई। अब जो यहाँ की बोलचाल भाषा थी उसको उन्होंने उर्दू बना दिया, क्योंकि उनके जितने भी हमारे दफ्तर के काम होते थे वो सब उर्दू में होते थे। अभी तक भी बहुत सारे अक्षर उर्दू के, अरबी फारसी के हमें वैसे के वैसे ही लिखने पड़ते हैं।
मैं शॉर्ट में बता दिया करो, और मैं उदाहरण आपको दूं, रोज जो महाभारत छिड़ा हुआ है यूपी और बिहार का, कर्नाटक के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, तीन चार रोज से चल रहा है कि यूपी और बिहार के जो हिंदी जानने वाले हैं वो तो हमारे टॉयलेट साफ करते हैं।
ठीक है,
रोज पेपर में दे रहा है और टीवी में दे रहा है कि ये हमारे सफाई करने वाले है जो हिंदी भाषा वाले।
भाई समझे रे बात को,
हिंदी का अपमान किया
उसने, हिंदी का अपमान नहीं किया मेरे भाई, उसने ये कहा कि जो बिहार और यूपी वाले गरीब हैं, अब आपके यहाँ पर भी बिहार और यूपी वाले आए हुए हैं, अब गरीब है वहां, उनके पास रोजगार नहीं था तो वो कहीं ना कहीं जहां से भी उनको रोजी रोटी मिलेगी वहां जाएंगे ना, जाएंगे ना
भाई।
हाँ, मतलब कहने का है कि वो गरीब है, मतलब मेन बात समझ, बात सारी है, मैं उसकी मैं वही बात बता रहा हूँ भाई जी, कर्नाटका में वहाँ की अपनी कन्नड़ भाषा चलती है। अब ये जो है ना, जहाँ भी रोटी मिलेगी वहाँ जाएंगे, अब जिसका एक जना चला जाएगा वहाँ उसको रोजगार मिल गया तो वहाँ
क्या कर्नाटक के लैटरबाद साफ नहीं करते
भाई जी, सब बात नहीं समझे। बात अभी आपको बताई कि यहाँ पर भी आज की डेट में आप यदि यहाँ से बिहार के यूपी के यदि कामगार चले जाएं, मजदूर लेबर वर्क काम करने वाले चले जाएं, तो यहाँ पर आपको काम कराना मुश्किल हो जाए, ठीक है नहीं। तो अब वो कम काम कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, उनको रोटी चाहिए, ठीक है नहीं। तो वो वहां से, वहां की जनसंख्या ज्यादा है, वहां कामगार नहीं थे इसलिए वहां पर गए। अब ये कहना कि तुम उनका शोषण कर रहे हो, हम उनको कह सकते हैं ना कि तुम उनका शोषण कर रहे हो, तुम उनको कम पैसे में काम करा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम उसकी हिंदी हिंदी भाषा बोलते है ना वो। अब कर्नाटका में जाकर वो अपनी कन्नड़ तो सीख के नहीं गए, अब वहां जाकर धीरे धीरे सीख तो लेते हैं, काम तो चला लेते हैं वहां पर। परंतु बात यहाँ है कि भाई ये गरीब हैं, कमजोर रहे, अब उनका उत्थान हो रहा है, हो जाएगा। अब सारे थोड़ा है, अब बिहार के अंदर है, यूपी के अंदर और पढ़े लिखे स्कॉलर भी बहुत है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। ऐसे कन्नड़ में भी है, अब बोल भाई जी बोलने से, अब आपको समझ में आ गया ना, इसमें बहस करने से कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा है, जो भी संस्कृत जिस समय थी, 5000 साल बाद संस्कृत तब वहां होगी। परमात्मा कहते मैं जब भी आता हूं इस समय, मेरे आने से ही तो समय शुरू होता है ना, उत्थान शुरू होता है ना, तो उस समय हर 5000 साल बाद हिंदी भाषा ही होगी। यही तो बाबा ने आज अंत समझाया कि हर चीज अपने एक्यूरेट टाइम पर वही होती है, किसी को पहले नहीं कह सकते। अब जैसे 12 पहले बजते हैं कि 1 पहले बजता है, इस समय परमात्मा हिंदी में समझा के जाते हैं, संस्कृत तो अब से 4000 साल बाद 3000 साल बाद आएगी, अब से 3000 साल बाद संस्कृत आएगी। तो संस्कृत पहले के हिंदी पहले, 12 पहले बजते हैं कि 1 पहले बजता है, ये राज समझना ही यहां बाबा अंत देने आए हैं। जो दुनिया में किसी के पास क्वेश्चन नहीं था कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, हाँ ठीक है। तो बाबा ने आके समझाया मुर्गी अपने टाइम पर होती है, अंडा अपने टाइम पर होता है, मतलब दोनों अपने अपने टाइम पर रहते हैं। अंडे से पहले मुर्गी भी चाहिए और मुर्गी से पहले अंडा भी चाहिए।
हाँ
हाँ, मतलब ये बाबा ने यही कहा कि हर चीज रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, है जी। ये बाबा ने समझाया, तो हिंदी अपने टाइम पर होती है, संस्कृत अपने टाइम पर होती है। वर्तमान जो है ना वो सबसे पहले, वर्तमान जो है वो हमारा सबसे पहले है। मुझे ठिकर भीतर में ठोक देते हैं तब मैं आता हूँ, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानी की है। तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड, जो कभी विनाश नहीं होता, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है, ये राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है, अब तो वही भारत पतित है। तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं शिवाय नमा, इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है, जो रिपीट होता रहता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, ये है ईश्वरीय वरण, ये है तुम्हारे 84वें जन्म का भी अंत, इसमें चारों वर्णों को का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है, ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब ये तुम्हारा क्या है, अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग का प्राइज दूंगा, उन्हों के भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते, बाप तुमको क्या देते हैं, स्वर्ग की प्राइज देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लूंगा, कहते हैं मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूं, मैं प्राइज नहीं लेता हूं, मैं क्योंकि मैं करता नहीं, कराता हूं, तो तुमको ही दूंगा, तुम हो शिव बाबा के पुत्र, इस ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होंगे ना। ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं, ना देवताओं का जन्म कल्याणकारी है ना शूद्रों का। ये तुम्हारा बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। वे इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं इनाम, किसी को भी जिसने थोड़ा दिखा दिया, हाँ जी मैंने अच्छा किया, पीस प्राइज हर एक को दे दिया जाता है। जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। बाबा भी कहते जो मेरे मददगार, प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस है, प्रॉस्पेरिटी भी है। ये तो वैशाल्य है, ये दुनिया क्या बन गई है, वैशाल्य बन गई है। सत्युग है, शिव आल्य, शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी है, हठ योगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राज योगी तो सिखा ना सके। भल हजार बार गीता महाभारत पढ़े, हजार बार गीता महाभारत पढ़े, ये तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसे जैसी आत्मा वैसा ही मैं परम आत्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में रहती है, इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ। और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, पावन से पतित और पतित से पावन होती हैं। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने ये रुद्र यज्ञ रचा है, ये रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है, सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। उसके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब हैं, रचते तब हैं जब कोई आपते आती हैं, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आपते आती हैं तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आपते आती नहीं, सतयुग त्रेता में कोई आपते आती नहीं। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है। तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं, बाबा क्या करते हैं, कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। वे सन्यासी तो सिर्फ घर बार का सन्यास करते हैं, वो सन्यासी क्या करते हैं, सिर्फ घर बार का सन्यास करते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। ये सब मरे पड़े, ये सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना, इनसे क्या दिल लगाना। ये तो मुर्दों की दुनिया है, ये दुनिया क्या है, मुर्दों की दुनिया है। इसलिए कहते हैं कि परिस्थान को याद करो। कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो, बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। ये महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वे सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं, शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते, मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। वे कैसे बनते हैं? लड़ाई से नहीं। ना लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, ना राम सीता ने। उन्होंने इस समय माया से लड़ाई की। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, योद्धा हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी पवित्र स्टार है। वे इतना कोई बड़ा नहीं, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो? इसलिए पूजा के लिए क्या करते हैं, इतना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। पूजा तो पहले बाप की होती है। सबसे पहला मंदिर इस पृथ्वी पर शिवलिंग बनता है, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर बनता है। पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंचा लक्ष्मी नारायण बनाया किसने? सबका सदगति दाता बाप बलिहारी उस एक की है ना, उनकी जयंती जन्मदिन बर्थ उनका डायमंड तुल्य है, हीरे जैसा है। बाकी सबके बर्थ कोड़ी तुल्य। शिव बाबा का जन्म डायमंड है, इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने वहां पर क्या रखा, डायमंड हीरा रखा। तो हीरा जन्म अनमोल है। अब ये पता नहीं था कि हीरा क्या क्या मतलब है। शिवाय नमा ये उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना बड़ा नहीं चलता, इतना समय नहीं चलता, 100 साल तक चले। जो कहते हैं जो जितना मुझे याद करेंगे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूं। मैं कुछ नहीं लेता, मैं कुछ भी नहीं लेता हूं, सब तुमको देता हूं। अब जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा वही जो है ना पाएगा। थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की, प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना, ये तो है अल्पकाल का सुख। बाप तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो, मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ही ये ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा। वे तो गद्दी भी एक को देंगे, वो जाएंगे तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है। बाबा तो तुम सबको गद्दी देते, बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, और तुमने तो मुझे ठिकर भीतर में डाल दिया, कितनी गलानी की है मेरी, तुमने कितनी बेइज्जती की है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, जब कोड़ी जैसे बन जाते हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहती, तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूं। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नरक बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो क्या करो, बाप के मददगार बन सच्ची सच्ची प्राइस लो। इसमें पवित्रता फर्स्ट है, पहली चीज क्या है इसमें, पवित्रता। मैं आत्मा हूं। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वे भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं, ये भी भारत को थमाते हैं, गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं, शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा। पुरानी जुत्ती कौन है, ब्रह्मा बाबा। बच्चों को राय देते हैं, नहीं ले सकते। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जो है ना, नहीं ले सकते। हाँ, शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं, नहीं ले नहीं सकते। माता के गर्भ में तो आते नहीं। पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारी रात, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए नंबर एक अशरीरी बनना है, नंबर दो पवित्र रहना है, नंबर तीन सुदर्शन चक्र फिराना है, नंबर चार स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। वरदान है विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भाव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे, तब उसे कहा जाएगा विजयी आत्मा। स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो, पवित्रता की रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब शाही, क्योंकि जितना पवित्र होंगे तो उसका नशा भी उतना रहेगा। हद की आकर्षण से न्यारे, ये छोटी छोटी बातों की तरफ तुम्हारी बुद्धि नहीं जाए, हद का कोई भी वस्तु आपको अपनी तरफ आकर्षित ना करे। पवित्रता मीन्स मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का आकर्षण किसके प्रति होगा? सिर्फ परमात्मा के प्रति, क्योंकि और कोई आत्मा परमात्मा से श्रेष्ठ नहीं है, तो किसी और आत्मा के प्रति भी आकर्षित नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।